ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 19वां अध्याय, राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। तीसरा श्लोक। यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरुः प्रभु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। श्री भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में स्थित हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञ में साक्षात उपस्थित थे। तात्पर्य। इस श्लोक में आगत साक्षात शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे। वस्तुतः पृथु महाराज एक जीवात्मा थे, किंतु उन्हें भगवान विष्णु से विशेष शक्तियां प्राप्त थीं। फिर भी भगवान विष्णु तो साक्षात श्री भगवान ठहरे, अतः वे विष्णु तत्व कोटि में आते हैं। महाराज पृथु जीव तत्व की कोटि में थे। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीव तत्व ईश्वर के अंश का। जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है तो वह शक्त्यावेश अवतार कहलाता है। यहां पर विष्णु हरिर ईश्वर के रूप में वर्णित हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, अतः वे हरि कहलाते हैं। वे ईश्वर कहे जाते हैं क्योंकि वे जो चाहें सो कर सकते हैं। वे परम नियंता हैं। परम ईश्वर पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण हैं। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर अथवा परम नियंता के रूप में करते हैं। तभी तो वे भगवद गीता में अपने भक्त का भक्त को आश्वस्त करते हैं, समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं समस्त पापों से तेरा उद्धार कर दूंगा, तू डर मत। यदि भक्त केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले तो वे समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर देते हैं। यहां पर उन्हें सर्वात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, जिसके कारण वे सबके शिक्षक हैं, गुरु हैं। यदि हम भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें तो हमारे जीवन सार्थक हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकता है। सौ अश्वमेध यज्ञ, ये अध्याय का शीर्षक है। और पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि जब पृथु महाराज ने पृथ्वी माता को दंड देना चाहा तो पृथ्वी माता ने पृथु महाराज का शरण ग्रहण किया और अलग अलग लोकों के निवासियों ने अलग अलग व्यक्तियों को वत्स के रूप में परिवर्तित करके पृथ्वी माता जो कि गाय रूप में थी उनका दोहन किया और उनके मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लिया। और इधर आगे चल के पृथु महाराज ने अपना राज कारोबार संभाला और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते कई यज्ञ किए उन्होंने। इंद्र को यह सहन नहीं हुआ। यहां पर बताया जाता है कि यज्ञपति विष्णु साक्षात पृथु महाराज के यज्ञ स्थली में उपस्थित थे। विष्णु का नाम है यज्ञ या यज्ञपति। यज्ञ भी विष्णु है और यज्ञ के भोक्ता भी विष्णु हैं। यज्ञ में जो अग्नि जलाई जाती है वो विष्णु का जिह्वा माना जाता है। भगवान को संतुष्ट करने के लिए वैसे यज्ञ की अग्नि और ब्राह्मण ये दो माध्यम होते हैं। ब्राह्मण को खिलाकर संतुष्ट कर सकते हैं और उनके पेट के माध्यम से विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, यज्ञ के अग्नि में जब हम अलग अलग तरह की सामग्री अर्पण करते हैं तो विष्णु का मुखारविंद कहलाता है, इसलिए विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। तो ब्राह्मण के मुख और यज्ञ के अग्नि को विष्णु के मुख के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसलिए यज्ञ भी विष्णु है और यज्ञ को करने का उद्देश्य भी विष्णु को प्रसन्न करना है, इसलिए उनको यज्ञपति भी कहा जाता है। तो यहां बताया जाता है कि विष्णु साक्षात वहां पे उपस्थित थे। उस काल में जब यज्ञ किए जाते थे तो सारे देवी देवता अपने अपने फल यज्ञ के फल स्वीकार करने स्वयं आते थे और विष्णु भी आते थे, क्योंकि विष्णु तो परम भोक्ता है सब यज्ञों के। ऐसे ये 5000 साल पहले ये सारे जो कार्य हैं यज्ञ के ये बंद हो चुके, क्योंकि बुद्ध देव ने आकर इन सारे यज्ञों को समाप्त कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण सही तरह से व्यवहार नहीं कर रहे थे, इसलिए भगवान ने बुद्ध देव का अवतार लिया और ये सारे पशु बलि इत्यादि के जो कार्य थे उनको बंद किया, अहिंसा का सिद्धांत का प्रचार किया। और उस समय बताया जाता है, श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि बुद्ध देव की प्रतीक्षा कर रहे थे देवता के पत्नी, क्योंकि वैदिक काल में इतने यज्ञ हुआ करते थे कि देवता हमेशा यहां पृथ्वी लोक पर आकर यज्ञ के फल स्वीकार करने के लिए उनको आना पड़ता था बार बार। दूसरे शब्दों में देवता अक्सर टूर पर रहा करते थे, बाहर जाते थे पृथ्वी लोक पर, कहीं यज्ञ यहां हो रहा है तो कहीं जम्बू द्वीप में तो कहीं इस द्वीप में, इधर उधर यज्ञ संपन्न होते थे तो यज्ञ के फल स्वीकार करने के लिए उनको इधर उधर जाना पड़ता था। तो देवता की पत्नी सोचती थी कि हमारे पति तो घर से बाहर इतने लंबे टूर में जाते हैं तो बुद्ध देव आ जाएंगे तो यज्ञ बंद हो जाएंगे तो यज्ञ की फल स्वीकार करने के लिए उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे साथ में रहेंगे हमारे पति। तो इस तरह से बुद्ध देव आए तो सारे यज्ञ समाप्त हो गए। आजकल भी हम देखते हैं कि प्राय कोई यज्ञ नहीं करते, कलयुग में तो यज्ञ हरिनाम संकीर्तन का है। तो भगवान का नाम का संकीर्तन करने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं, सारे देवी देवता गण भी संतुष्ट हो जाते हैं। कई हमारे भक्त कृष्ण भक्ति में आने के बाद में हृदय में इच्छा रखते हैं देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। कभी कभी हृदय में भय हो जाता है कि इतने सालों से देवी देवता की पूजा करते आए हैं और अचानक कभी बंद कर दें, केवल कृष्ण की पूजा करें भक्ति करें, शायद देवी देवता हमारे ऊपर कुपित हो जाएं, नाराज हो जाएं। लेकिन यज्ञ शब्द का अर्थ है कि विष्णु संतुष्ट होते हैं, और जहां विष्णु संतुष्ट होते हैं तो सारे देवी देवता संतुष्ट होते हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। जिस तरह से जब अग्निहोत्र के यज्ञ किए जाते थे तो विष्णु के साथ में सारे देवी देवता आते थे यज्ञ के फल स्वीकार करने के लिए, उसी तरह से जब हरि नाम का संकीर्तन होता है तो विष्णु तो संतुष्ट हो ही जाते हैं, साथ साथ सारे देवी देवता भी वहां अदृश्य रूप में नृत्य करने आते हैं, कीर्तन में शामिल होने के लिए आते हैं, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सोचते हैं कि देवी देवताओं को अलग प्रसन्न करना है, वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कितने देवी देवताओं को शांत कर सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी बताया करते थे। एक मूर्ख माली और एक मूर्ख पंडित के बारे में। एक बड़े जमींदार के पास बहुत जमीन थी, तो अपने घर के पास उन्होंने अच्छा बगीचा बनाया, उद्यान। साथ साथ उनके घर में पूजा पाठ भी होता था, तो एक ब्राह्मण भी उन्होंने रखा था, जिनको वो तनख्वाह देते थे दोनों को। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों मूर्ख थे। तो मूर्ख कैसे थे, तो एक बार ये जमींदार अपने बगीचे में घूमने गए, तो देखा कि ये माली को कुछ भी पता नहीं है कि पेड़ पौधे का देखभाल कैसे करना है। क्या कर रहा था माली, पानी लेकर हर एक पत्ते के ऊपर पानी डाल रहा था बूंद बूंद से, और पत्ते को साफ कर रहा था, लेकिन जड़ के ऊपर पानी नहीं डाल रहा था, केवल पत्तों को साफ करता, डंडे को साफ कर लेता ऐसे। तो फिर जमींदार ने डांटा कि अरे तुम इतने मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि ज्यादा पत्तों के ऊपर पानी डालोगे ये मुरझा जाएंगे पत्ते, और वैसे तो पेड़ में पौधे में पानी डालना है तो जड़ में डालना चाहिए। तो ये हुई मूर्ख माली की बात। और दूसरा रहे, जब वो अंदर गए, बड़े परेशान होकर अंदर चले जा रहे थे, तो अंदर देखा कि उनका ब्राह्मण जो है वो उसने भोग चढ़ा दिया है, भोग चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहा है। तो थोड़ा प्रसाद लेकर कान में डाल रहा है इस कान में, थोड़ा प्रसाद लेकर इस कान में, थोड़े अपने नसिकों में से डाल रहा है, थोड़े इधर आंखों में डालने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा इधर डाल रहा है। तो बड़े हैरान हो गए जमींदार कि ये क्या कर रहा है आदमी। उनको पता चला कि वास्तव में ब्राह्मण को ये पता नहीं था कि पेट को संतुष्ट कैसे करना है। सोच रहा था कि सब ये सर में छेद है, कहीं से भी भोजन डालेंगे तो पेट में चले जाएगा। तो इस तरह से जमींदार ने फिर बहुत डांटा उस ब्राह्मण को भी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ठीक इसी तरह से जो लोग केवल देवी देवताओं को संतुष्ट करने जाते हैं और विष्णु को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं, वो भी इसी तरह के मूर्ख हैं। वो ये नहीं जानते कि पेट को संतुष्ट करने का रास्ता एक ही होता है। ऐसा नहीं कि कानों से डालें तो पेट तक पहुंच जाएगा, पेट तक पहुंचाना है तो मुंह से डालना पड़ता है, फिर मुंह से जाए खुद ब खुद पेट संतुष्ट हो जाएगा, इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी बताया है कि जब हम जड़ को पानी डालते हैं तो सारा वृक्ष संतुष्ट हो जाता है। इसी तरह से जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो सारे देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, कि किसी को खास करके कृष्ण भक्त को इस बारे में कोई संदेह संशय नहीं होना चाहिए। यहां पर इस श्लोक में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और या विष्णु वो सारे लोकों के स्वामी हैं, सर्वलोक गुरु प्रभु हो, और साथ साथ सर्वात्मा भी हैं, अर्थात सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और सारे प्राण सारे यज्ञों के भोक्ता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अपने ही बारे में भगवद गीता में घोषणा करते हैं। पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं। कोई बता सकते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। वो कहते हैं शांति प्राप्त करने का सूत्र वो क्या है, ये तीन चीज जानना। जो व्यक्ति इन तीन चीजों को जान लेगा वो परम शांति की प्राप्ति कर लेगा। पहली बात क्या है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जो व्यक्ति तपस्या करता है, यज्ञ करता है, उसे जानना चाहिए कि हमारी सारे यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता केवल श्री कृष्ण हैं। भोक्ता मतलब जिसको भोग करने का अधिकार है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति जाके भोग करने का प्रयास करे तो वह चोर कहलाता है। जिस तरह से हमारे घर में आकर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे चीजों का भोग करे हमारे अनुमति के बिना तो वो चोर कहलाता है। तो उसी तरह से यज्ञों के फल और तपस्या का फल इनके भोक्ता केवल श्री कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के वो स्वामी हैं, सब उनकी संपत्ति है ये। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सर्व लोकों के स्वामी हैं, केवल अब मेरा घर मेरा है, बाकी सबके मालिक भगवान हैं, ऐसा नहीं है। अपना घर भी भगवान का ही है, अपना शरीर, अपने पैसे भी, सब कुछ वो भी भगवान का ही है। इसलिए सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के सुहृद हैं, शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, सच्चे मित्र हैं सबके। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इन तीन गुणों को जो जान लेता है वो परम शांति की प्राप्ति कर सकता है, और जो व्यक्ति इन तीन बातों को नहीं जानता वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण सारे लोकों के स्वामी हैं, वो चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर कहानी से सिद्ध हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में लीला कर रहे थे, द्वारका के ऊपर राज कर रहे थे, तो उस समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि जाके मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूं। बहुत दिन हुए थे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। आपको याद होगा कि जब श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे, 5 साल की उम्र में थे, तो श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बहुत सबक सिखाया था और ब्रह्मा जी के मान को खत्म कर दिया था, अज्ञान को दूर कर दिया था, संशय को नष्ट कर दिया था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अभी कई साल हो गए पृथ्वी लोक के ऊपर, भगवान का दर्शन नहीं किया, जाके दर्शन कर लाते हैं। आज उस बार तो जब मैं गया था वो ग्वाल बाल की लीला कर रहे थे, अभी तो राजा की लीला कर रहे हैं, जाके देख तो लेते हैं कि हमारे प्रभु अभी कैसे लीला कर रहे हैं। तो आए द्वारका, द्वारका में आए तो वहां महल में पहुंचे श्री कृष्ण के, वहां चौकीदार खड़े थे। तो चौकीदार ब्रह्मा हो कोई हो, भगवान के दरबार में जब आए तो सब छोटे होते हैं। तो चौकीदार ने पूछा कि किन से मिलना है, बोला हमें श्री कृष्ण से मिलना है। तो चौकीदार ने कहा ठीक है, ठहरिए एक मिनट। तो श्री कृष्ण के पास गए चौकीदार, तो श्री कृष्ण को पता चला, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में भी स्थित हैं, तो उनको पता चला कि ब्रह्मा जी के हृदय में अभी तक घमंड पूरी तरह से गया नहीं है, अभी तक सोच रहे हैं कि मैं ये सृष्टि करता हूं इस ब्रह्मांड का, मैं कोई बड़ा आदमी हूं, विशेष आदमी हूं। तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी को फिर से सबक सिखाना था। देखिए ब्रह्मा जी भी हो कोई, कितने जल्दी हम भूल जाते हैं, घमंड कितने जल्दी आ जाता है। आज सबक सीख लेते हैं, अगले क्षण भूल जाते हैं, अगले दिन की बात तो दूर है। तो इस तरह से श्री कृष्ण ये बात अच्छी तरह से पहचान ली और चौकीदार से कहा कि ब्रह्मा जी से जाके पूछो कि श्री कृष्ण ने पूछा है कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो चौकीदार ने जाके ब्रह्मा जी से पूछा कि श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसा प्रश्न है, कौन से ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा जी हैं, एक ही तो है। जिस तरह से अगर आपके घर में हमारे प्रधानमंत्री आए हैं और आप अंदर से आपके नौकर को जब बोले पूछो तो कौन से प्रधानमंत्री आए हैं, तो प्रधानमंत्री सोचेंगे अरे ये क्या बात है, ये देश के कितने प्रधानमंत्री है, एक ही तो है प्रधानमंत्री। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे ये क्या बात है, फिर भी कहा ठीक है, कोई पूछने का कोई गुप्त उद्देश्य होगा मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि कह दो कि चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं, चार मुख वाले, चार सर वाले ब्रह्मा आए हैं। तो चौकीदार ने जाके श्री कृष्ण को बता दिया। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है बुलाओ, चतुर्मुख ब्रह्मा को बुलाओ अंदर। तो ब्रह्मा जी अंदर आए और जैसे ही अंदर आए तो कृष्ण वहां अकेले बैठे थे और एक क्षण में उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। और वो क्या दृश्य था कि वो अकेले नहीं थे उस कमरे में कृष्ण के साथ में, एक क्षण में वहां हजारों करोड़ों ब्रह्मा उपस्थित हो गए और ब्रह्मा जी देखते देखते आश्चर्यचकित हो गए और उनका आश्चर्य और विस्मय बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि जब इधर देखते हैं उधर देखते हैं ब्रह्मा ही ब्रह्मा, सब जगह ब्रह्मा जी दिख रहे हैं और उनके जैसे केवल ब्रह्मा नहीं, चार मुख वाले। वो सोच रहे थे कि मेरे तो केवल चार मुख हैं लेकिन यहां ब्रह्मा जी है तो 10 मुख वाले हैं और वहां तो उसके तो 100 मुख हैं, उसके तो 500, उसके तो 1000, उसके लाख, उसके 10 लाख, उसके 1 करोड़ ऐसे सर वाले ब्रह्मा जी इतने सारे पड़े सब इधर खड़े हैं, सब हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं, क्या आज्ञा प्रभु आप बताइए। और फिर सभी सारे ब्रह्मा जी ने अपना अपना सर झुकाया और अपना किरीट जो है वो सर तक, सर का जमीन का स्पर्श किया, और ये सारे किरीटों का जो आवाज एकदम से ढांग करके बहुत जोर से आवाज आई, और ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कितने ब्रह्मा जी और ये भी बड़े बड़े, इनके सामने ऐसे लग रहा है कि मैं चींटी हूं, ये सब हाथी हैं। तो जिस तरह से हाथियों के सामने चींटी को कितना क्षुद्रता महसूस होती है, उसी तरह से हमारे ब्रह्मा जी को ऐसे ही अनुभव हुआ। सोचने लगे कि ये क्या है, बहुत अद्भुत दृश्य आज पहली बार मैंने देखा। तो भगवान श्री कृष्ण की योग शक्ति, माया शक्ति के द्वारा केवल हमारे ब्रह्मा जी को दूसरे ब्रह्मा जी दिखाई पड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सारे ब्रह्मा जीयों को बुलाया था और सारे एक क्षण में हाजिर हो गए। अभी भगवान की शक्ति देखिए कि हर एक ब्रह्मा जी को जो कि अलग अलग ब्रह्मांडों से आए थे, उनको लग रहा था कि वो उन्हीं के ब्रह्मांड में जो द्वारका है वहां पर गए हैं, और उनको दूसरे ब्रह्मा दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उनको यह लग रहा था कि मैं अकेले ब्रह्मा कृष्ण भगवान के साथ में हूं। तो इस तरह से हरेक ब्रह्मा जो आया वहां, वो सोच रहा था कि मैं अकेला हूं और मैं अपने ही ब्रह्मांड के भीतर हूं और श्री कृष्ण अकेले मेरे को दर्शन दे रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। हरेक ब्रह्मा जी ऐसे सोच रहा था, केवल हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं वो सारे ब्रह्माओं को एक साथ में देख पा रहे थे। तो देखिए ब्रह्मा जी की क्या हालत हुई होगी। बेचारे ब्रह्मा जी पहले जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ग्वाल बालों के रूप में और वत्सों के रूप में विस्तारित किया था, उस समय ब्रह्मा जी का सर चकरा गया था बुरी तरह से। और इस बार भी ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतने साले अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी हैं, मैंने तो सोचा था कि मैं अकेला ब्रह्मा हूं, मैं ही कोई बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे भी अलावा कितने ब्रह्मा जी हैं, और ये ब्रह्मा सब बड़े 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 ब्रह्मा हैं, मैं तो छोटा छोटा हूं, मेरे तो कुछ भी नहीं है। और ये सारे बड़े बड़े ब्रह्मा आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी को साक्षात पता चला, पता कि ये कृष्ण जो है ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, कि सर्वलोक महेश्वरम, इस तरह से उनको ये अच्छी तरह से ज्ञात हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण केवल सब लोगों के स्वामी नहीं है लेकिन भोक्ता भी है। जो मालिक होता है उसको ही भोग करने का अधिकार होता है और किसी को नहीं होता। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मालिक हैं, इसलिए भोग करने का अधिकार भी केवल उन्हीं का है। लेकिन जब जीव इस बात को भूल जाता है और अपने आप को भोक्ता समझता है, तो फिर उसके सारे संकट कष्ट शुरू हो जाते हैं, इसीलिए उसको यहां पर आना पड़ता है। यही मूल कारण है जीव का पतन होना यहां इस भौतिक संसार में। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जैर्गुणेण कारणं गुणसंगोस्य सद असत योनि जन्मसु। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से जीव का पतन भगवान के धाम से यहां भौतिक संसार में हुआ। जब जीव पुरुष बनने का प्रयास करता है, पुरुष मतलब भोक्ता, प्रकृति मतलब जो भोग किए जाते हैं, पुरुष जो जीव होता है उसका रूप होता है, स्वभाव होता है वास्तव में भोग किए जाना। लेकिन जब जीव भोग करना चाहता है तो पुरुष का रूप धारण कर लेता है। प्रकृति भुंकते, भुंकते मतलब भोग करना, तो ये प्रकृति का भोग करना चाहता है तो भगवान कहते हैं ठीक है चले जाओ भौतिक संसार में, भौतिक जगत में जाओ और नकली भगवान बनने का प्रयास करो, और वहां जाके जब धक्के खाओगे, माया के हाथों से, पैरों से थप्पड़ लात खाओगे, तब होश ठिकाने आ जाएंगे, तब मेरे पास तुम आओगे। भगवान बहुत कोशिश करते हैं हमें यहां रोक के रखने के लिए उनके धाम में, लेकिन जीव जब जिद्दी हो जाता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, जिद्दी बच्चे को अभी क्या करना। जिस तरह से आप में जो जो माता पिता है जानते हैं कि बच्चे जब जिद करते हैं, छोटे बच्चे खास करके, तो कभी कभी छोड़ देना पड़ता है, फिर आखिर में सबक सीख के फिर आ जाते हैं खुद चुपचाप। तो इसी तरह यही हालत जीव की होती है। और इस तरह से जीव यहाँ संसार में आ जाता है और अलग अलग योनियों में भोग करने का प्रयास करता है। इसलिए सत असत योनि जन्मसु, उसे अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो ये भोग करने की प्रवृत्ति, ये हमारे भौतिक संसार में आने का और यहाँ रहने का मूल कारण है। तो इसलिए ये भोग करने की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्यों जागृत होती है? ईर्ष्या की वजह से। जब हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता क्यों, हमें भी भोग करना चाहिए। जिस तरह से भगवान 16,108 रानियों से शादी करके रहते हैं द्वारका में, हमारे भी इतने रानियां होनी चाहिए, क्यों भगवान के अकेले ऐसे होना चाहिए? तो ईर्ष्या की भावना जागृत हो जाती है। तो ईर्ष्या की वजह से जीव नकली भगवान बनता है। भगवान तो कभी बन नहीं सकता। इस तरह से शिशुपाल ने भी ईर्ष्या की भगवान श्री कृष्ण से, सहन नहीं हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को इतना ऊंचा पद मिल रहा है, आदर सत्कार मिल रहा है, सभी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के अवसर पर। तो शिशुपाल को सहन नहीं हुआ, खड़े होकर बहुत अपशब्द बोलने लगे। तो सारे पांडव भी भीम इत्यादि सब तैयार हुए युद्ध करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको शांत कर दिया। और आखिर स्वयं श्री कृष्ण ने इंतजार किया और 100 बार जब गलत शब्द बोले शिशुपाल ने, तो उस समय कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर गर्दन उसकी काट दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, लेकिन हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से और झूठे भोक्ता बनना चाहते हैं, इसलिए हमारे सारे कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं तो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, तो फिर मैं क्यों भगवान में हूं या भौतिक संसार में हूं? जवाब क्या है? जवाब है कि जी हाँ, आप ईर्ष्या करते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि मैं ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन आप कर रहे हैं, और इसका सबूत है कि आप यहां तक अभी तक जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर ईर्ष्या आप नहीं करते तो आप भगवान के धाम में रहते, तो यहां रहकर भोग करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अगर वास्तव में आप भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं तो भोग करने का प्रयास बिल्कुल शून्य कर दीजिए, क्योंकि भोग करने का अधिकार केवल भगवान श्री कृष्ण का है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। तो क्यों आप केवल अपने आप को अनसूया समझते हैं? जब वास्तव में आप भोग कर रहे हैं तो ईर्ष्यालु है ही। एक बार एक व्यक्ति थे, जब उसने गाय की हत्या की, तो गाय की हत्या जब की तो मृत्यु का समय आ गया, तो यमराज उनको बुलाने आ गया। तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में पत्ता भी भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के नहीं से अनुमति के बिना नहीं हिलता। कण कण के पीछे श्री कृष्ण है, कार्य करने वाले तो श्री कृष्ण ही है। तो गाय की हत्या हुई है तो मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है? तो उस समय यमराज, वो तो महाजन है, बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, श्री कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बताओ कि ये जमीन किसकी है? ये मेरी है। किसने खरीदी? मैंने खरीदी। किसके पैसों से खरीदी? मेरे पैसों से खरीदी। ये पैसे कैसे कमाए? मेरे परिश्रम से कमाए। तुमने कमाए? हाँ मैंने कमाया। फिर ये फसल किसने उगाई? किसने बीज बोए? मैंने बोए। फसल काटा किसने? मैंने काटा। गाय को खरीदा किसने? मैंने खरीदा। गाय का पालन पोषण कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। तो अब बताओ गाय की हत्या किसने की? इस तरह से जब भोग करने का सवाल आता है तो हम सामने आते हैं। कोई गलत काम होता है तो हाँ श्री कृष्ण करते हैं, सब करने वाले तो वही हैं। हाँ करने वाले वही हैं। अगर वास्तव में हमारे हाथों से गलत काम जो हो जाते हैं, अगर उसके लिए हमें कृष्ण को दोषी ठहराना है तो अच्छे कामों का श्रेय भी उनको जाना चाहिए। पक्षपात नहीं करना चाहिए, अच्छी चीजें हमारे लिए, बुरी चीजें उनके लिए नहीं। तो इस तरह से भक्त जानते हैं, भक्त उल्टा, भक्तों की सोच विचार का ढंग जो होता है वो उल्टा होता है। जब कोई गलत काम होता है तो अपने ऊपर ले लेते हैं, और कोई अच्छा काम होता है तो भगवान को श्रेय दे देते हैं। लेकिन ये आदमी था जिसने गाय की हत्या की, उसके विचार उल्टे थे, जैसे आजकल नास्तिक लोगों के होते हैं, या जो भोगवादी होते हैं। अच्छे कामों का श्रेय खुद लेते हैं, गलत कामों का दोष भगवान को देते हैं। तो इस तरह से शांति व्यक्ति को प्राप्त करना है, या समाज में, दुनिया में भी अगर हमें शांति चाहिए, तो ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक सभी को पाठ करना चाहिए और इसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। तो कृपा करके ये एक श्लोक आप सब कंठस्थ कर लें, ये आपके लिए होमवर्क है। घर में जाकर ये एक श्लोक, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो आप भी शांत हो सकते हैं, आनंद से फिर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण है नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध केवल शक्त्यावेश अवतार है, वो विष्णु तत्व नहीं है। जैसे पृथु महाराज जीव तत्व है, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि विष्णु तत्व और जीव तत्व में अंतर होता है। तो जीव तत्व कभी भगवान नहीं बन सकता, उसे जब कोई विशेष शक्ति प्रदान की जाती है तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो शक्त्यावेश अवतार जीव ही होता है, जैसे पृथु महाराज थे और बुद्ध देव भी शक्त्यावेश अवतार थे, इसलिए उनका कोई अलग सा लोक विशेष लोक नहीं है।
सिर थे रावण के 10 सिर, वैसे कालिया के बहुत सिर थे, तो इस इतने सिर होने का मतलब क्या है? दे गॉट द सेम वन सोल एंड द डिफरेंट माइंड इंटेलिजेंस एंड पॉसिबल व्हाट इज इट?
नहीं, शरीर एक ही है। ब्रह्मा जी के 4 सर होना, रावण के 10 सर होना, इनका अलग अलग तात्पर्य है। रावण के 10 सर थे, ब्रह्मा जी के 4 4 दिशाओं में, ब्रह्मा जी के 10 एक साथ में ऐसे, लेकिन ब्रह्मा जी के 4 दिशाओं के हिसाब से 4 सर। लेकिन और ब्रह्मांड हैं जो और भी बड़े 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 हैं, इसलिए कितने सारे और दिशाएं हैं, तो जितने दिशाएं हैं उतने सर ब्रह्मा जी के लिए। तो आत्मा तो एक ही है शरीर में। जैसे हम देखते हैं कभी कभी किसी को उंगलियां 6 हो जाती हैं 5 के बजाय, हाथ किसी के और कुछ हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है कभी कभी। आत्मा एक ही है, उसी तरह से ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, लेकिन वो ब्रह्मा जी का रूप ही ऐसा है। तो आत्मा एक ही है, बुद्धि एक ही है, मन एक ही है।
8वें अध्याय में देखा है कि जो दोहन करने के वास्ते अलग अलग लोगों से जो वत्स बना के यहाँ आते हैं, तो यहाँ से जो भी चीजें लेके जाते हैं, जैसे इंद्र स्वर्गलोक में सोमरस लेके जाते हैं और जो असुर लोग है वो सुरा लेके जाते हैं, तो उनको उनके जिधर रहते हैं उधर ये वो जिस चीज है वो उधर नहीं मिलती थी, इसी वस्तु से वो पृथ्वी से लेके जाते हैं।
वहां भी मिलता होगा, लेकिन यहाँ से कोई खास, जैसे हम जाते हैं रत्नागिरी में तो आपस वहां का लेकर आते हैं, खास कोई खास स्वाद हुआ होगा उधर। आम यहाँ भी मिलता है, वहां भी मिलता है।
संकीर्तन इतने करते हैं तो फिर देवताओं को आना पड़ता होगा? फिर
आना पड़ता है नहीं, उनको अच्छा लगता है आने के लिए, संकीर्तन में शामिल होने के लिए उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी तो कृष्ण के भक्त हैं। जिस तरह से भक्तों को संकीर्तन में आने के लिए अच्छा लगता है, आके नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, जैसे भक्तों को आकर क्लास में बैठना अच्छा लगता है, हालांकि आकर सोते हैं कभी कभी, फिर भी आते हैं, तो उसी तरह से देवी देवताओं को भी अच्छा लगता है आने के लिए कीर्तन में। कभी कभी क्लास में भी बैठते हैं अदृश्य होकर, इसलिए आप सोइए मत, क्योंकि हो सकता है आपके साइड में कोई देवी देवता बैठे हो, आपको पता नहीं चलेगा अदृश्य रूप, तो देवी देवता के सामने सोना अच्छा नहीं होता। हाँ चल रहा, बोलो।
ने बोला कि कौन मेरे आगे चलता है वो थोड़ी दिन में पूरा ब्रह्मांड को संकीर्तन फेंकने पूरा ला सकते हैं, मगर क्यों ऐसा नहीं हुआ? इतना कठिन था वो प्रभुपाद बोला वो रूल्स?
प्रभु थे कि पूरे विश्व को कृष्ण भावना भावित बनाए, लेकिन उनके रहते हुए ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न है। प्रभुपाद के नियम कठिन नहीं थे, हमारी बुद्धि कठिन है, हम लोग फॉलो नहीं करते। प्रभुपाद ने जो बताया, जो भी सिखाया, उसका पालन करते तो वास्तव में 18 दिन में सारे विश्व को जीत सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं, आज भी नहीं कर रहे हैं। सरल लोगों के लिए सरल है, जो सरल नहीं है उनके लिए बहुत कठिन है, तो हमारे ऊपर है। कठिन को चीज को कठिन है सरल है वो हमारे हाथ में। कोई कह सकता है ये माला करना कितना कठिन है, क्लास में जगे हुए रहना, खास करके देवामृत दास की क्लास कितना कठिन है, तो कोई कहेगा नहीं हम जाग सकते हैं, आसान है। तो ऐसा है, हमारे ऊपर हमारी इच्छा कितनी तीव्र है, हम जागे हुए रहना चाहते हैं या हम सोना चाहते हैं, उसी तरह से हम भक्ति अच्छी तरह से करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, हमारे सिंसेरिटी के ऊपर है। अगर हमने सिंसेरली भक्ति की तो सब कुछ हो जाएगा, भगवान सब हमारे माध्यम से कार्य कराएंगे, शक्ति दे देंगे। इसलिए हमें जपा के ऊपर इतना जोर देना चाहिए, अगर जपा करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान हमारे माध्यम से बहुत सारे कार्य करेंगे, हमको शक्ति देंगे। लेकिन जप, अच्छे जप के बिना कुछ नहीं हो सकता, जो भी होगा वो भी गड़बड़ 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 हो गए, बहुत तकलीफ हो जाएगी सबको। लेकिन जब जप ठीक से चलता है सब ठीक ठाक हो जाता है, सारी समस्याओं का समाधान इधर ही है, बस जप करते रहे सब जीत लेंगे। लेकिन दुनिया को जीतने के पहले अपने मन को जीतना है, ये और बड़ा युद्ध है। दुनिया को जीतने का आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है, अपने आप को जीतना यह सबसे मुश्किल बात है। अपना मन कुछ 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 कहता रहता है, कहता रहता है कुछ ना कुछ, चलो अभी जप छोड़ दें, आज क्या है इसमें, जप में क्या रखा है, दिन रोज तो करते रहते, एक दिन नहीं किया तो क्या बड़ी बात है, रोज 16 करते हैं, आज 14 किया तो क्या है। तो मन तो कुछ ना कुछ कहता रहेगा, जप के समय कोई ना कोई विचार आते हैं, कोई ना कोई बातचीत करने की इच्छा होती है। इस तरह से जप ठीक से करेंगे सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए सब भक्तों को जप 16 माला जप का नियम